सर, आप अपना नाम और आप डाइट में किस पद पर है, अगर आप वो बता सकते हैं।
जी मेरा नाम लालचंद्र है और मैं डाइट में वरिष्ठ प्रवक्ता पद पर पोस्ट हूँ और मेरी यहाँ पर नियुक्ति फरवरी 2022 से हुई है।
आपका क्या कहते हैं, डाइट में एक जो होता है शैक्षिक भूमिका, जिसे बोलते हैं
जी
शैक्षिक भूमिका, वो कैसी है, मतलब क्या।
डाइट में 7 यूनिट्स होती हैं, विभाग जिसको हम बोल सकते हैं। तो हालांकि डाइट में 6 वरिष्ठ प्रवक्ता के पद होते हैं
जी
और 7 यूनिट उन्हीं 6 वरिष्ठ प्रवक्ताओं के लीडरशिप में जो है दिए जाते हैं। क्योंकि मैं अकेला हूँ और एक प्रभारी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, तो दोनों लोगों को यूनिट्स डिवाइड किए गए हैं और उन 7ों में से इन सर्विस ट्रेनिंग और जिला संसाधन इकाई और कार्य अनुभव विभाग मुझे दिए गए हैं और शेष मैम को दिए गए हैं। तो हम लोग
जी
मिल के
जी
प्रवक्ताओं अपने क्लर्क के माध्यम से एक टीम के रूप में जो भी काम सौंपे जाते हैं उससे संबंधित वो हम लोग करते हैं।
तो क्या आप अपने, जैसे आपने बताया कि आप थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें
जी
ध्यान देते हैं, तो क्या आप बच्चों को पढ़ाने में भी जाते हैं, जैसे लेक्चर लेना या क्लासेस।
हाँ, हम तब जाते हैं जब हमारे पास छुट्टी पर लेक्चरर्स हमारे चले जाते हैं या फिर मेंटरिंग करने स्कूल्स में चले जाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ इस समय वर्तमान में 5 कक्षाएँ संचालित हो रही
जी
हैं, 2 कक्षाएँ सेक्शन है ए और बी वर्ष 2021-23-22 का और 22-24-22 के 3 क्लासेस संचालित की जा रही हैं। तो एक लेक्चरर के जाने से 5 क्लासेस खाली हो जाती हैं। तो हम उस मैनेजमेंट में यदि हमारे लेक्चरर्स उपस्थित हैं तो हम उनका समायोजन लगाते हैं, यदि कोई एक्सेस हो रहा है या तब भी खाली हो रहा है तो हम चले जाते हैं क्लास में, बच्चों से इंटरेक्शन करते हैं, उनको पढ़ाते हैं या जो भी उनकी समस्याएं होती है वो देख लेते हैं। यदि हमारे विषय से संबंधित टॉपिक है तो हम पढ़ा भी देते हैं उनको, उनको अच्छा भी लगता है।
जी
क्योंकि हम लोग सिविल सर्विस से आए हैं तो काफ़ी बच्चे एक्साइट रहते हैं कि सर उसके बारे में बताइए, वो चीज़ें बताइए, तो हम उसको भी साझा कर देते हैं। क्योंकि बच्चे अभी करियर बनाने के मोड में हैं तो
जी
काफ़ी बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं कि वो चीज़ें सर बताइए कि क्या ये पढ़ें, कैसे पढ़ें, ये सब चीज़ें हैं। और घुमा फिरा के वो चीज़ें पढ़ाई से रिलेटेड ही होती हैं, वो सब चीज़ें जो है बताते हैं बच्चों को।
सर, फिर आप इसको मैनेज कैसे करते हैं, क्योंकि आपने बताया कि यहाँ पर एक ही वरिष्ठ प्रवक्ता है,
जी
तो आपका काम एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रंट पर भी है और
जी
जैसे आपने बताया कि आप लेक्चर भी ले रहे
जी
हैं, तो आप इतने टाइम कैसे मैनेज
नहीं
करते हैं।
तो लेक्चर रेगुलर हम लोग नहीं लेते हैं,
जी
हफ्ते में 1 दिन 2 दिन देखे कि 1 पीरियड 2 पीरियड ऐसा जा रहा है जिसमें कोई अवेलेबल नहीं हो रहा है तो उसमें हम चले जाते हैं।
जी
शेष समय में हम जो है यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क या मीटिंग्स है या कोर्ट केसेस हैं और चीज़ें हैं तो उसको देखते रहते हैं, मैनेज करते हैं।
अच्छा सर, आपकी राय में एक डाइट का मेन उद्देश्य क्या होता है, मतलब वो किस उद्देश्य पे ज़्यादा फोकस करके काम करते हैं।
क्योंकि मैम डाइट की स्थापना मुख्यतः शिक्षक प्रशिक्षण के लिए की गई थी,
जी
लेकिन बदलती परिस्थितियों के अनुरूप वर्तमान में नई शिक्षा नीति 2020 जो आई है उसमें डाइट को मुख्य भूमिका दी गई है कि जो है शिक्षक प्रशिक्षण के साथ साथ वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर शिक्षा के क्षेत्र में, खासकर बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नवाचारी उपाय करे और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बने,
जी
रिसर्च भी करे, ट्रेनिंग भी दे और बेसिक शिक्षा में जो सुधार सकते हैं, जो ऐसी चीज़ें जो नई शिक्षा नीति के अनुरूप हों उसको लागू करने में, लागू करवाने में जो भी यथासंभव जो चीज़ें हों उसमें डाइट मुख्य भूमिका निभाए। जैसे रिसर्च में है कि हम लोग क्या करते हैं डाइट में, एक एक्शन रिसर्च होता है, क्रियात्मक शोध। तो क्रियात्मक शोध में यह होता है कि हम बेसिक शिक्षा स्कूलों में छोटी छोटी समस्याओं पर शोध करते हैं शॉर्ट टर्म। हमारे सैंपल छोटे होते हैं, एक स्कूल बेस्ड होते हैं, छोटी समस्याएं लिए, उस पर हमने प्लान बनाया, उस पर रिसर्च किया, उसका जो आउटपुट निकला, रिजल्ट निकला, फिर उसको हम इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ें करते हैं। फिर शिक्षकों की कुछ समस्याएं हैं जिसे समय समय पर इन सर्विस ट्रेनिंग में नई नई टेक्निक्स आती रहती हैं, नई नई चीज़ें, क्योंकि दुनिया ग्लोबल हो गई है तो उसमें विभिन्न देशों में विभिन्न संस्थानों में जो नई नई चीज़ें मिलती हैं या लोग प्रयोग करते हैं, तो उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि वो टीचर्स तक पहुँचे। हमारे शासन प्रशासन या CRT हमारा सोचता है कि वो जाएँ, बच्चों को नई नई टेक्निक से पढ़ाई जाए ताकि वो चीज़ें बच्चों तक ईजी वे में मिले। बाल केंद्रित शिक्षा हो, टीचर केंद्रित शिक्षा नहीं हो, तो उसके लिए वो ट्रेनिंग हमारे यहाँ क्या होता है कि हम यहाँ मास्टर ट्रेनर तैयार करते हैं। वो मास्टर ट्रेनर BRC पर जाते हैं, फिर वहाँ BRC लेवल पर अपने टीचर्स को देते हैं। कभी कभी वहाँ पूरे जिले से यहीं पर टीचर भेज दिए जाते हैं, यहीं हम लोग बुला लेते हैं, यहीं पर बैच वाइज ट्रेनिंग करवा देते हैं। जैसे अभी हाल में एक संस्था थी इंग्लिश का जो अभी समाप्त हुआ है बैच वाइज, हम लोग करीब 6 बैच में 50-50 के बैच में हमने ट्रेनिंग दिया है। इसके पहले अभी कोविड के जस्ट पहले केंद्र सरकार का एक निष्ठा प्रोग्राम हुआ था, इसमें सभी टीचर्स का ट्रेनिंग होना था, तो वो भी संचालित किया गया। क्योंकि बीच में फिर कोविड आ गया तो फिर बीच में रोक दिया गया, फिर ऑनलाइन ट्रेनिंग दी गई। दीक्षा ऐप के माध्यम से, सरल ऐप के माध्यम से हम लोग टेक्नोलॉजी से भी जुड़े हुए हैं, तकनीकी सक्षम बना रहे हैं अपने टीचर्स को भी, बच्चों को भी, कि जहाँ तक उपलब्ध हो रहा है कम से कम वो जो गैप है इंडिया और भारत के बीच वो कम हो सके, ताकि हमारे बच्चे नई अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके।
जी सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे आपने ये जो गोल्स बताए, उद्देश्य बताए, इनका जो राज्य का एक करिकुलम होता है, पाठचार्य जैसे बोलते हैं, तो ये कैसे आप इसका तालमेल कैसे होता है कि आपको पाठचार्य पे भी ध्यान देना है, फिर जो डाइट के गोल हैं उन्हें भी, उन पर भी ध्यान देना है, तो इनका तालमेल आप कैसे बिठाते हैं?
जो हमारी पाठचर्या है शिक्षा नीति के अनुरूप बनाई जाती है,
जी,
फिर उसी पाठ्यचर्या से रिलेटेड, उसी पाठ्यचर्या के आधार पर हम लोग गोल निर्धारित करते हैं, फिर उसी हिसाब से अकॉर्डिंग सिलेबस बनता है हमारा, फिर वही सिलेबस बच्चों में जाता है। जैसे पाठ्य सहगामी क्रियाएं हुई, या फिर पाठ्यचर्य में यह है कि हमको राष्ट्रीय एकता के बारे में, या बच्चों में जो समावेशी शिक्षा के लिए दिव्यांग बच्चे हैं या कम समझ वाले बच्चे हैं, हम सबको साथ में कैसे लेकर चलें, इस हिसाब से हम पाठ्यचर्य के अनुरूप ही हमारा सिलेबस बनता है, फिर वो सिलेबस क्लास में जाके इम्प्लीमेंट होता है। तो एक समझिए कि इंटरलिंक होता है, उसमें कहीं गैप नहीं होता है, तो वो पूरी टीम मिलके, स्टेट की जो एजुकेशन टीम है सब मिलके हम उसको फॉलो करते हैं, पूरा करने की कोशिश करते हैं।
अच्छा सर, जैसे आपको क्या लगता है, क्या और कोई नए तरीके हैं जिनको यूज़ करके, इस्तेमाल करके डाइट ये जितने उद्देश्य हैं इन्हें और अच्छे रूप से मतलब वो कर सकता है?
हाँ, कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पर और बेहतर की जा सकती हैं। जैसे अभी कोरोना हुआ तो क्योंकि पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन बंद कर दिया गया, तो हमारे डाइट में या बेसिक स्कूलों में भी ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की गई, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, वहाँ उनको होमवर्क दिए गए, क्लास वर्क दिए गए। तो और एक चीज़ जिसे अभी शासन ने हम लोगों को फंड देने की बात की है कि डाइट्स में भी स्मार्ट क्लासेस संचालित कहीं कहीं हो भी रही हैं, तो वो चीज़ें हों तो उससे क्या होगा कि हम बच्चों को हमेशा जोड़े रखेंगे, या ऑनलाइन माध्यम पर जो कक्षाएँ उपलब्ध हैं वो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं तो भी पढ़ लेंगे। उसी तरीके से डाइट्स में भी स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था की जा रही है ताकि बेहतर से बेहतर प्रशिक्षण हो, नई नई टेक्नोलॉजियाँ हमारे प्रशिक्षु सीखें, फिर उसको भावी टीचर हैं तो जाकर इम्प्लीमेंट करेंगे।
जी सर, सर क्या आपको ऐसा लगता है कि जो डाइट होती है वो एक स्वतंत्र रूप से अपना जो कार्य उनको सौंपा जाता है SCRT द्वारा, तो क्या आपको लगता है वो स्वतंत्र रूप से अपने कार्य में मतलब कर पाते हैं वो लोग आगे?
हाँ, चूँकि हमारे जो ऊपर हमारी हायरार्की, उसमें जो हमारे CRT संस्था है या फिर मंडल और डिस्ट्रिक्ट लेवल के हमारे अधिकारी हैं, वो हमारा सहयोग करते हैं और हमको निश्चित रूप से वो स्वतंत्रता देते हैं कि हमको जो लक्ष्य दिए गए, हमको जो गोल्स मिले हैं वो हम बेहतर से बेहतर तरीके से कर सकें। हमको जहाँ भी परेशानी होती है हम उनको बताते हैं, हमको कोऑर्डिनेट करते हैं, जहाँ तक यथासंभव हो सकता है हेल्प भी हमारी करते हैं।
अच्छा, तो सर जैसे आपने बताया कि आपकी हेल्प कर रहे हैं,
जी,
तो आपको क्या लगता है और कैसे मतलब और कौन से तरीकों से वो आपकी सहायता कर सकते हैं? शायद हो सकता है भी वो आपकी मतलब जैसे आपने बताया कि आपको कुछ होता है तो वो सुनते हैं, और आपके
जी,
और क्या तरीके अगर आपको लगता है कि और कोई नए तरीके जो आपके मन में है उससे आपको हेल्प कर पाए?
अभी तक तो थोड़ी सी समस्या फंडिंग की थी, जो अभी निकट भविष्य में जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें महानिदेशक महोदय ने कहा है कि वो फंड की समस्या हम दूर करेंगे और हम लोग एक गैप एनालिसिस रिपोर्ट तैयार करके वहाँ भेज भी रहे हैं कि हमको क्या क्या जरूरतें हैं ताकि हम सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में काम कर सकें। तो स्मार्ट क्लास हो गए या और संसाधन चाहिए हमको ताकि सभी क्लास स्मार्ट बने और जो ऑडिटोरियम बने या और चीज़ें हैं, तो उसके लिए फंड की बात हुई है। तो मिलेगा तो हम लोग उस हिसाब से फिर और बेहतर चीज़ें कर सकते हैं।
जी सर, आपके हिसाब से एक डाइट के मतलब ताकि वो थोड़ा लॉन्ग टर्म में रह पाए, उसके लिए मतलब क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती है एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए?
देखिए, अब इसकी परिकल्पना डाइट की इसीलिए की गई है कि वो लीड करे डिस्ट्रिक्ट की शिक्षा व्यवस्था को। तो उसके लिए हम लोग ये हमारे जिसे एक्शन रिसर्च की बात मैंने की, और ये स्वतंत्रता हमको SCERT ने दी है कि हम और अपने तरफ से बेसिक शिक्षा पर कोई रिसर्च करना चाहते हैं जो बेसिक शिक्षा में एक इम्प्रूवमेंट करे या नई जो मतलब नई इनोवेशन हैं उनको लागू करें या जो और ग्रास रूट लेवल की समस्याएं बच्चों के स्तर पर या टीचर्स के स्तर पर हैं जिससे बच्चे और टीचर कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं या फिर आउटपुट उतना बेहतर नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए, तो उसके लिए हमको जो है और कार्य करने की ज़रूरत है। लेकिन उसके लिए अब हमको पिछले 2 सालों से मानव संसाधन मिल गए हैं, हमारे पास लेक्चरर्स नहीं डाइट्स में थे, अब सभी विषयों के 17 लेक्चरर्स आ गए हैं, हमारी क्लर्कियल टीम है, हमारे प्रिंसिपल्स हैं, हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, तो सब लोग मिल के उसको अब निकट भविष्य में ये आशा करते हैं कि और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेहतर बने। हम नाइट में अभी देखें, उसके पहले साइट एक एग्जाम हुआ था, तो उसका जो आउटपुट है, खासकर मैं अयोध्या डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करूंगा, तो हमारा जो रिजल्ट था वो नेशनल लेवल पर औसत से ऊपर था। तो कहीं कहीं ये हमारी जो एकेडमिक टीम है ये प्रभावी है, यह है इसको और प्रभावी करने की ज़रूरत है और बेहतर करने की ज़रूरत है, इसमें सुधार की गुंजाइश है, इसमें हमारी टीम मिलकर कोशिश करेगी कि हम और बेहतर करें।
जी सर, अब हम SCERT के बारे में पूछेंगे, तो आपके और SCERT की बातचीत जैसे आपने बोला होती, तो वो किस प्रकार की होती है, उसका नेचर क्या है?
अब SCERT जिसे अभी कुछ दिनों पहले नई शिक्षा नीति 2020 जो है, इसमें पाठ्यचर्य और पाठ्यक्रम दोनों विकास हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग टेक्स्ट बुक फिर से लिखी जा रही है। तो वो हमारे लेक्चरर्स को बुलाते हैं, वहाँ जाते हैं, तो वहाँ काम करते हैं उस टॉपिक्स पर। तो अलग अलग जैसे अभी मई जून में साइंस की जो कंटेंट विकसित किया जाना था जूनियर लेवल का, उसमें हमारे साइंस के लेक्चरर्स गए थे। इस समय मैथ का टेक्स्ट बुक विकसित किया जा रहा है, अभी हमारे विवेक पांडे जी गए हैं वहाँ, तो पिछली बार भी गए थे, अभी आज फिर गए थे, तो ये काम हो रहा है। फिर हम टीचरों के मोटिवेशन के लिए SCERT द्वारा स्टेट लेवल पर प्रतियोगिता कराई जाती है, कहानी सुनाओ प्रतियोगिता, योग प्रतियोगिता और कहानी लेखन, कहानी सुनाओ कहानी लेखन अलग अलग चीज़ें, फिर राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए। तो ये वहाँ से हमको जब निर्देश मिलते हैं तो हम वहाँ अपने नीचे फॉलो करते हैं, टीचर्स डिस्ट्रिक्ट लेवल के हमारे यहाँ होती हैं, हम यहाँ से सेलेक्ट करके वहाँ भेजते हैं, ये चीज़ें होती हैं। ट्रेनिंग के लिए हमारे मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेन करते हैं, वो SCERT या CMAT में उनको ट्रेनिंग मिलती है, वो यहाँ आते हैं, यहाँ देते हैं, फिर वो हम टीचर्स को देते हैं, इस तरह की चीज़ें हम कोऑर्डिनेट करते हैं और उनका सहयोग भी मिलता है।
सर, आपकी जो ये बातचीत होती है ये किन लोगों से होती है SCERT में?
SCERT में कई विभाग हैं, ट्रेनिंग का है तो जो है जेडी ट्रेनिंग है उनसे होती है, या एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर्स हैं, या विशेष चीज़ें होती हैं जैसे कभी कभी जो कोर्ट केसेस होती हैं
जी,
तो वो डायरेक्टर मैम या डायरेक्टर सर जो भी होते हैं वो सीधे अप्रोच कर लेते हैं, चूँकि कोर्ट का मैटर काफ़ी सेंसिटिव होता है तो त्वरित कार्यवाही अपेक्षित होती है, तो डायरेक्ट तो उनका हम लोग को निर्देश मिल जाता है, उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं।
सर, ये कोर्ट केसेस जो आप बोल रहे हैं ये मतलब किस
कोर्ट केस? मैम, अभी ये टेट और सुपर टेट के पहले विशेष BTC एक हुआ करता था, 6 महीने का विशेष BTC कोर्स होता था
जी,
तो उसके बाद टीचर्स नियुक्त होते थे
जी।
तो अभी क्या है कि अभी DLED BTC करके टेट और सुपर टेट पास करके डायरेक्ट नियुक्ति हो जाती है, पहले 6 महीने ट्रेनिंग होती थी, तो मेरिट बेस होता था वो, टेट नहीं था तब
जी,
आरटीआई के पहले, आरटीई के पहले मेरिट बेस होता था, तो उसमें तमाम चीज़ें होती थी। टीचर्स में कुछ विसंगतियां हैं, रिजेक्ट कर दिया गया, वो कोर्ट चले गए, रिट दाखिल कर दिया, तब फिर उसको जवाब देना पड़ता था कि इनको क्यों निरस्त किया गया। कभी कभी हमारे पक्ष में आता था हमारा निर्णय, कि कभी कभी विपक्ष में आता था, इस तरह की चीज़ें होती हैं। कोई किसी का प्रमाण पत्र है, किसी दिव्यांग गलत प्रमाण पत्र लगा दिया किसी ने, तो फिर उसको हमने रिजेक्ट कर दिया, फिर उसने चैलेंज किया, मान लिया हाई कोर्ट ने हमारी बात मान ली, तो सुप्रीम कोर्ट चले गए, इस तरह की होती रहती हैं चीज़ें।
अच्छा,
हाँ। तो
सर, जैसे ये एससीईआरटी द्वारा आपको एक पाठचार्य दिया जाता है
जी,
तो आपको उनके द्वारा किस टाइप का, जैसे टीएलएम मैंने सुना होता है, तो किस टाइप के टीएलएम से वो आपको सपोर्ट करते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें, ताकि वो जो करिकुलम है, पाठचार्य है, वो बच्चों तक अच्छे रूप में जा सके, तो उसके लिए वो आपको क्या क्या, मतलब टीएलएम यूज करने के लिए किस बेसिस पे आपको सपोर्ट करते हैं?
एससीईआरटी नहीं, बेसिक शिक्षा विभाग हमको हमारी स्कूलों में टीएलएम का कंटेंट देता है। कभी कभी टीएलएम प्रिंट करके वहीं से प्रिंट रिच मटेरियल के रूप में उपलब्ध बच्चों को कराए जाते हैं। उसमें छोटी छोटी कहानियां होती हैं, चित्र होते हैं, मैथ्स के, साइंस के सरल जो है प्रयोग होते हैं, वो चित्र कथा के रूप में दिए गए होते हैं, जिसको हम क्लासरूम में हमारे बेसिक स्कूल में लगा दिए जाते हैं
जी।
तो उससे बच्चे इजीली कहीं कभी खुद से, या हमारा टीचर पढ़ाता है तो उसी उदाहरण को देता है, हमारा टीचर खुद भी वो टीएलएम कभी कभी बना लेते हैं, उसके लिए हम लोग जो है जो अच्छा करते हैं उसकी प्रतियोगिता भी यहाँ करवा देते हैं, या फिर टीएलएम बनाने के लिए भी जो है अभी हाल ही में हमारे यहाँ एक ट्रेनिंग हुई, क्योंकि टीएलएम कैसे बनाएंगे, उसकी थीम क्या होगी, क्योंकि जब हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं तो उसका कई बेस होता है। एक तो होता है उसकी समझ विकसित करने के लिए कौन से टीएलएम, कुछ चीज़ें होती है सिर्फ याद करने से काम चल जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमको उनको समझ विकसित करनी होती है, ताकि वो बाहरी जीवन से वो अपने आप को रिलेट कर सके उस ज्ञान से जो उनको स्कूलों में मिला है। से भारत के प्रधानमंत्री कौन है, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रपति कौन, याद कर लिया काम चल गया, लेकिन जब हम उसको यातायात के साधन पढ़ाएंगे, पौष्टिक भोजन पढ़ाएंगे, पोषण पढ़ाएंगे, तब वो क्लासरूम की चीज़ों को बाहर से रिलेट करेगा
जी।
कि हमको आयोडीन का नमक क्यों खाना है, लाल बत्ती जलेगी सड़क पे तो हमको रुक ही जाना है, उसे पढ़े नहीं तो अपने व्यवहार में जीवन में उतारे उसको, तो उसके लिए अलग अलग चीज़ें अलग अलग स्तर पर जरूरत होती हैं, तो इस लिहाज से हम लोग जो है हमारे टीचर टीएलएम बनाते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, उसी तरह साइंस का है
जी। सर, अगर मैं प्री सर्विस एजुकेशन और इन सर्विस एजुकेशन की बात करूं, तो उसमें आपको किस तरीके से एससीईआरटी सहायता करती है, मतलब किस किस क्षेत्र में, जब आप क्या ट्रेनिंग में आते हैं लोग, तो किस किस क्षेत्र में एससीईआरटी आपकी सहायता करते हैं, या आपको लगता है कि उनकी सहायता की आपको किस किस क्षेत्र में ज़रूरत है?
इन सर्विस ट्रेनिंग तो अधिकांशतः हमारे यहाँ सीआरटी से ही आती हैं, उन्हीं से दिशा निर्देश मिलता है कि हम करें या करवाएं, ट्रेनिंग दें, क्योंकि एक तरीके से हमारा संस्थान ट्रेनिंग के लिए ही है, तो कुछ प्रस्ताव हम भेजते हैं कि यह ट्रेनिंग टीचर्स को कराया जाना आवश्यक है, तो हमको अनुमति दे देते हैं, वो ट्रेनिंग हम करवाते हैं, तो कुछ वहीं से उन्हीं के द्वारा निर्देश मिलता है कि ये ट्रेनिंग टीचर्स में करवाई जानी है, तो आप कोऑर्डिनेट करिए, या तो करिए या बीआरसी पर करवाइए निर्देशित करके, फंड भी उन्हीं से मिलता है। और प्री सर्विस ट्रेनिंग तो हमारे डीएलएड प्रशिक्षु हैं, तो ये राज्य स्तरीय एक जो है मेरिट बनता है, फिर अलाट होते हैं बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, फिर हमको जो है क्लासेस में डिवाइड करके हमारे लेक्चरर्स उनको पढ़ाते हैं, उनकी भी सेमेस्टर वाइज परीक्षा मतलब होता है, एक सेमेस्टर चार सेमेस्टर में होता है, तो वहाँ थ्योरी यहाँ पे पढ़ते हैं, और इंटर्नशिप के रूप में वो स्कूल्स में भी जाते हैं
जी।
तो वहाँ जाएंगे तो वहाँ एक अध्यापक के रूप में क्या करना है उनको वो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वहाँ बच्चों को पढ़ाते भी हैं, थ्रू प्रॉपर चैनल प्रॉपर वे में पाठ योजना बनाते हैं, उसका अनुकरण करते हैं, फिर हमारे लेक्चरर्स वहाँ जाते हैं, उनको देखते हैं कि ये कितना बढ़िया पढ़ा रहे हैं, फिर उनको इवैल्यूएशन करते हैं कि आप में क्या कमियां हैं तो उसको सुधार लें, तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। फिर हम कहीं इंटरनल असेसमेंट भी करते हैं यहाँ पर, टेस्ट भी लेते हैं, और उनकी प्रैक्टिकल मतलब व्यवहारिक चीज़ें भी देखते हैं, हाँ, तो इस तरह से चलती रहती है
जी। सर, अगर मैं आपके डाइट की और एससीईआरटी के संबंध की बात करूं, तो आपके और उनके संबंध कैसे, क्या वो कॉपरेटिव है या आपको कुछ मतलब कुछ ऐसे है?
अभी तक तो जब से मैं आया हूँ मेरा अनुभव रहा है बहुत कॉपरेटिव है। हर सेक्टर में जब भी हमारी कोई जिज्ञासाएं या समस्याएं होती हैं तो वो त्वरित प्रतिक्रिया देते हैं और सुनते हैं बातों को, हमारा समाधान करते हैं। कहीं से भी हमको ऐसा लगा नहीं है अभी तक कि जो है डिले होता है, तुरंत समाधान। डायरेक्टर सर थे तब भी, डायरेक्टर मैम हैं और जो जेडी लेवल के अधिकारी हैं, विधि अधिकारी हैं जो कोर्ट केसेस देखते हैं और कई लोग हैं, तो सबसे फोन से भी यदि पत्राचार से भी वो समस्याओं का समाधान हो जाता है त्वरित गति से।
अच्छा हाँ। अभी सर हम थोड़े जिला स्तर के जो संस्था हैं उनके बारे में पूछेंगे, तो क्या आपकी और जो ये जिला शिक्षक अधिकारी होती है, क्या आपकी और उनकी बातचीत होती है?
हाँ, देखिए एक डाइट में जो हमारी प्राचार्य मैम है डिप्टी डायरेक्टर रैंक की अधिकारी होती हैं, तो ये जिले का शिक्षा बेसिक शिक्षा का सबसे बड़ा पद होता है
जी।
तो इन्हीं के अंदर हमारे जिला विशेष शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी एक तरीके से काम करते हैं, ये हेड होती हैं। और बीसी शिक्षा अधिकारी और बीओ खंड शिक्षा अधिकारी ये सब लोग कोऑर्डिनेट करते हैं
जी।
और कई मामलों में तो जो हेड होती हैं वो मैम ही होती हैं, तो वो लोग भी कोऑर्डिनेट करते हैं, मैम भी कोऑर्डिनेट करती हैं।
मतलब प्रिंसिपल?
हाँ, प्रिंसिपल मैम। तो जिसे चयन समिति हुई या ट्रेनिंग हुआ या तमाम वित्तीय मैटर में मान लिया कोई टेंडर हुआ तो उसकी हेड मैम ही होती हैं।
अच्छा
हाँ, यही हेड होती हैं। उसमें बीएससी भी होते हैं, कोई बीओ भी रहेगा, डीएम सर की अनुमति से कोई एक अदर विभाग का भी अधिकारी पार्शियल टीना हो, फ्री एंड फेयर चीज़ें हो तो डीएम को ये पावर होता है, वो कर देते हैं, टीम गठित कर देते हैं, लेकिन उस टीम की हेड मैम ही होती है, हमारी प्रिंसिपल मैम होती है।
तो ये जो बातचीत होती है ये एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक दोनों को मद्देनजर रखते हुए?
हाँ हाँ।
अब जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप ये जो प्री सर्विस एजुकेशन और इन सर्विस एजुकेशन है, इस क्षेत्र में आपको जो आपके ऑफिसर्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उनसे आपको किस प्रकार की सहायता की उम्मीद है या आपको किस प्रकार की सहायता मिलती है उनसे?
अभी तो इस सरकार, पिछली सरकार भी थी, तो बेसिक शिक्षा में हम लोग शासन ने आधारभूत ढांचा जो है काफ़ी मतलब संतोषजनक स्थिति में नहीं था
जी।
तो उसके लिए ऑपरेशन कायाकल्प चलाया गया जिसमें हमारे डीएम सर और सीडीओ सर की महत्वपूर्ण भूमिका रही स्कूल्स की कायाकल्प में मदद करने की, जिसको उन्होंने कोऑर्डिनेट किया पंचायती राज विभाग से और बेसिक शिक्षा विभाग को। तो काफ़ी टॉयलेट्स, ड्रिंकिंग वाटर और MDM, कभी कभी बाहर बच्चे बैठते थे, टाइल्स लगना, क्लासरूम बढ़िया होना, तो ये सब चीज़ें हमारे ज़िले के जो अधिकारी हैं वो कोऑर्डिनेट करके करवाए और इस समय स्थिति काफ़ी अच्छी है। हाँ, ये है, इसमें अभी भी सुधार की गुंजाइश है। और हम लोगों के द्वारा भी प्रिंसिपल मैम, जिला विशेष शिक्षा अधिकारी भी यदि कोई किसी भी स्तर का अपने विभाग का हेल्प मांगते हैं तो वो कोऑर्डिनेट दिया जाता है। और खासकर हमारे जो वर्तमान DM हैं नीतीश कुमार सर हैं, ये CDO मैम भी, तो ये लोग काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं, मैं कई बार मिला हूँ इन लोगों से। तो अभी एक DM सर ने अपने स्तर से टीचर्स को हमारे मोटिवेट करने के लिए सेमिनार करवाई, उसमें हेड टीचर्स पूरे ज़िले के 2-3 बैच में आए और DM सर ने उनसे करीब 2-2 घंटे इंटरेक्शन किए, उनकी समस्याओं को सुना, फिर उस पर बातचीत की, फिर उसके कुछ अपने तरफ से समाधान सुझाए, जिसमें हम लोग भी शामिल हुए। तो काफ़ी अच्छा रहा। DM सर का ये है कि जो है हमारे टीचर मोटिवेट हों, जहाँ भी समस्याएं हैं उनकी समस्याएं सुनी जाएं और ताकि वो अच्छी से अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है बच्चों को दे सकें।
जी सर, अभी BRC और CRC के साथ में आपके कैसे संबंध है और उनसे किस प्रकार की बातचीत आपकी रहती है, मतलब किस क्षेत्र में ज़्यादा, जैसे अकेडमिक या एडमिनिस्ट्रेटिव?
नहीं, हमारा डायरेक्ट मुख्यतः अकेडमिक लीडर है
जी,
तो हम लोग अकेडमिक ज़्यादा फोकस करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए जिला विशेष शिक्षा अधिकारी हैं, वो अकेडमिक के अकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों हैं, लेकिन हम लोग मूलतः अकेडमिक हैं। बेसिक शिक्षा में ARP हैं, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन, जो जाते हैं मेंटरिंग करते हैं स्कूल्स में, उनको देखते हैं कि टीचर्स पढ़ा रहे हैं क्लासेस में, उनकी क्या कमियां हैं या वो कैसे बेहतर और नवाचार इनके पास होते हैं, वो किसी टॉपिक पर किसी क्लास में किस तरह वो पढ़ाएं कि और बेहतर तरीके से बच्चे समझ सकें
जी।
इसके लिए ARP हैं, हमारे डाइट मेंटर्स भी जाते हैं और हम लोग हर महीने महीने के लास्ट शनिवार को अक्सर या जब भी हमको सुविधाजनक स्थिति में मिलता है तो डाइट में हम ARP खंड शिक्षा अधिकारी बेसिक शिक्षा अधिकारी हमारे मेंटर्स रहते हैं, हमारे प्रिंसिपल में एक समीक्षा बैठक करती हैं कि उन्होंने मेंटरिंग की तो उसमें क्या चीज़ें निकल के आई, पहली बात मेंटरिंग की पूरी हुई कि नहीं, पूरी हुई तो क्या स्कूलों की डबलिंग तो नहीं हुई कि मतलब अलग अलग क्षेत्र में जाएँ सभी स्कूल्स कवर हो जाएँ सभी क्लासेस कवर हो जाएँ ताकि जो ये कर रहे हैं उसका बेहतर आउटपुट मिले। फिर यदि उनको हमारे ARP SRG को या मेंटर्स को कोई समस्या स्कूलों में आई हो क्षेत्र में आई हो तो उसके लिए हम इसीलिए BO और BSA रहते हैं ताकि हम तुरंत वही कोऑर्डिनेट करके उनकी समस्या का समाधान करवा सकें। तो वो हर महीने चलती रहती हैं और वो शिक्षक संकुल की बैठक होती है हर महीने होती है, तो ये CRC से भी नीचे का है, एक शिक्षक संकुल 5 टीचर 5 स्कूल्स रहते हैं उसके अंदर में, तो नई नई चीज़ें जो है बताते रहते हैं, वो यहाँ से ऑनलाइन या सीख के जाते हैं बताते हैं चीज़ों को, तो उस लिहाज से वो बैठके करते हैं तो हमारे डाइट से भी उसकी प्रतिभागिता होती है, हमारे डाइट मेंटर्स जाते हैं, उन्होंने इन्वाइट कर लिया तो हमारी प्रिंसिपल मैम भी जाती हैं, हम लोग भी जाते हैं। फिर हेड टीचर्स की मीटिंग यदि BRC पर हो रही है खंड शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में तो महीने में एक मीटिंग प्रिंसिपल मैम को एक समय है तो अटेंड करती हैं, वो जाती हैं ताकि वहाँ उनकी समस्याओं से ये भी रूबरू हो सकें और उसको उच्च अधिकारियों तक पहुँचा सकें या उनकी समस्याएं या उस स्तर की हैं कि तुरंत समाधान किया जा सके तो उसकी भी कोशिश की जाती है कि उनका समाधान तुरंत किया जाए, क्योंकि ये सबसे जिले के सबसे बड़ी शिक्षा अधिकारी हैं बेसिक शिक्षा की, तो यदि कोई शिकायतें भी हैं अपने अधिकारियों की तो टीचर तुरंत इनसे कह सकें ताकि उच्च चैनल तक पहुँचा सकें, हालांकि सब लोग कॉम्पिटेंट हैं और अच्छा काम कर रहे हैं।
सर जैसे आपके डाइट में ये होता होगा इन सर्विस प्रोग्राम होते होंगे और स्कूल को क्या कहते हैं सुधारने के लिए कुछ कार्यक्रम आप आयोजित करते होंगे, तो उसके लिए आप कौन से प्रकार के पाठचार्य हो गए पेडागोजिकल मेथड हो गए और किस तरीके का आप एक निगरानी का जो एक सपोर्ट होता है आप वो किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं ताकि ये जो दोनों चीज़ें हैं ये अच्छे वे में हो सके।
उसीलिए हमने बताया कि जो हमारे डाइट मेंटर्स हैं हमारे लेक्चरर्स जाते हैं SRG की हमारी टीम है ARP की टीम है
जी।
तो ये सिर्फ वहाँ जब स्कूल्स में जाते हैं तो ये सिर्फ वहाँ देखती नहीं कि टीचर पढ़ा कैसे रहा है, ये भी देखते हैं जो टीचर्स हमारे कुछ इनोवेटिव तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं तो उससे सीखते हैं या खुद भी कभी कभी एक्सपेरिमेंट करते हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, कंटेंट भी खुद विकास कर लेते हैं TLM कि रोचक तरीके से बच्चे सीखे, तो उसको क्या करते हैं वो और टीचर्स को बताते हैं इनोवेशंस को अपने, या हमने तो एक दो मीटिंग में मैं खुद पर्सनली मैंने कहा है कि आप लोग वीडियो बना लिया करिए, कोई टीचर अच्छा इनोवेटिव तरीके से पढ़ा रहा है किसी टॉपिक को तो वीडियो बना के एक ग्रुप बना है डिस्ट्रिक्ट लेवल का क्वालिटी एजुकेशन का, तो उसमें डालते हैं तो हमारे टीचर उसको देखते हैं तो काफ़ी कुछ ऐसे हैं कि इनोवेटिव नहीं करना चाहते लेकिन देखते हैं कि हाँ ये टीचर मतलब बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के एक्स्ट्रा लागत के वो चीज़ें कर सकते हैं कि बच्चे और रोचक तरीके से सीख रहे हैं तो लोग फिर वो अपनाते हैं, लोगों को अच्छा भी लगता है उसमें कॉम्प्लीमेंट भी मिलता है।
हाँ सर आपके BRC और CRC से मतलब जो संबंध है क्या मतलब आप उसमें कुछ टाइप के इम्प्रूवमेंट चाहते हैं कि जो भी सपोर्ट उनको उनसे आपको मिल रहा है आप उस उनसे संतुष्ट हैं?
देखिए सुधार की गुंजाइश तो हमेशा होती है
जी।
कभी कभी क्या होता है कि हमारे टीचर्स शिकायत करते हैं कि ये काम करना पड़ रहा है वो करना पड़ रहा है तो इसमें उनको समय कम मिलता है, लेकिन हम लोग मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि वैसे भी हमारे महानिदेशक सर का कहना है कि जो टीचिंग टाइम में टीचिंग हो अदर काम BLO ड्यूटी या और कुछ काम करना है तो स्कूल टाइम के बाद करें, तो ये थोड़ा सा हमको लगता है हमारे टीचर्स को और मोटिवेट करने की और ट्राई करने की ज़रूरत है ताकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेहतर हो, और जहाँ भी ज़रूरत होती है हम लोग जाते हैं फील्ड में तो ये कोशिश करते हैं कि उनकी समस्याओं को पहले सुना जाए, ये समस्याएं जेन्युइन हैं अपने स्तर तक सुधार करने लायक हैं सुधार की जाएँ अदरवाइज हम ऊपर जो है फॉरवर्ड कर देते हैं या फिर बीएससी से बीयू से कोऑर्डिनेट करके उनकी समस्याओं का समाधान हो रहा है तो हम कोशिश करते हैं तुरंत हो जाए उनकी समस्या कम से कम समय में।
सर आपका क्या किसी स्कूल से भी वो है कोलैबोरेशन मतलब या बातचीत है या जो स्कूल होते हैं इधर पे?
अभी हाल ही में हमारे महानिदेशक महोदय ने कहा है कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी हैं वो कम से कम 5 या 10 स्कूल गोद लें ताकि उनको पर्सनल निगरानी में रखें, उनको निपुण भारत एक कार्यक्रम चल रहा है तो उसके तहत यह है कि उन्होंने कहा है हमारी मैम ने भी 10 स्कूलों को नॉमिनेट किया है, गोद लिया है, उनको सूचना दी है कि हम निगरानी करेंगे, आप लोग इसको जल्दी से जल्दी निपुण बनाएं, तो वो एक कार्यक्रम चल रहा है
जी।
और वैसे भी ये होता है कि कभी कभी कोई अच्छा स्कूल है या अच्छा नहीं है उसके बारे में एक अटैचमेंट हो जाता है, तो हमारे कुछ हैं बीओ भी हैं, हमारे राइट मेंटर्स भी हैं, तो नियमित विजिट पर जाते हैं वहाँ और देखते हैं भाई कुछ समस्या है तो बताइए। कुछ टीचर ऐसे भी हैं कि कम संसाधन में कम समय में अच्छा काम कर रहे हैं। मैं किसी स्कूल पर गया था, नाम हमको नहीं याद आ रहा, तो वहाँ मात्र 2 महिला टीचर हैं और उनके यहाँ स्ट्रेंथ करीब 170-180 है और उपस्थिति हमेशा 120-130 रहती है। निश्चित रूप से उन महिलाओं ने अच्छा काम किया होगा टीचर्स ने, तो और लोगों से मैंने फीडबैक लिया तो पता चला कि नहीं ये लोग रेगुलर आती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं और बच्चे पढ़ेंगे आएंगे तभी वहाँ उपस्थिति बढ़िया रहती है। तो इस लिहाज से हम लोग कोशिश करते हैं कैसे लोग मोटिवेट करें कि कोई समस्या है तो आपका हम तुरंत समाधान करेंगे लेकिन आप अच्छा करती रहिए, इससे और टीचर हमारे मोटिवेट होते हैं।
तो सर आपको लगता है कि जो स्कूल्स है ये कोऑपरेटिव है या मतलब इनमें अभी भी कुछ सुधार की जरूरत है?
अभी सुधार की जरूरत है और सुधार की जरूरत नई शिक्षा नीति के अनुरूप अब जब पूरा हमारा पाठ्यचर्या हमारी आ जाएगी, सिलेबस आ जाएगा, तब फिलहाल ऑपरेशन कायाकल्प जो हुआ है उसमें काफ़ी कुछ काम हुए हैं और अभी कुछ और इम्प्रूवमेंट उसमें गुंजाइश है होने की। इम्प्रूवमेंट आधारभूत संरचना के स्तर पर भी है और अभी भी हमारे यहाँ थोड़ा सा कहीं कहीं किसी किसी क्षेत्र में, जैसे नगर क्षेत्र में काफ़ी दिन हो गया टीचर्स नहीं भेजे गए हैं, हमारे जो पुराने टीचर्स थे वो हैं, तो स्थिति ये है कि नामांकन 200 है और टीचर मात्र 3 हैं, जबकि बेसिक में प्रति 30 बच्चों पर एक अध्यापक और जूनियर में 35 पर एक अध्यापक होना चाहिए, तो उस रेशियो में हमारे टीचर नहीं हैं। ग्रामीण एरिया में तो हैं, वहाँ भी अंतरजनपदीय ट्रांसफर हुए तो फिर उसमें हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर समायोजन नहीं किए गए, बीएससी को अधिकार नहीं है, तो वहाँ पर समस्याएं आ रही हैं कि टीचर कम हैं दूर दराज के क्षेत्रों में, जाना नहीं चाहते हैं या हैं कम तो हैं कम, तो वो चीज़ें समाधान हो जाएं और टीचर आ जाएं तो और बेहतर हो सकता है। और काफ़ी हम लोग जब हमारी टीम जाती है हमारे SRG ERP तो ये कोशिश करते हैं माननीय निदेशक महोदय भी है कि लेसन प्लान बनाएं बच्चों को पढ़ाएं, जो टॉपिक जो चीज़ें बता रहे हैं वो प्लान तरीके से बचाएँ, तो उसमें अभी हमारा प्रयास जारी है, हमारे काफ़ी टीचर कर रहे हैं लेकिन उसमें और भी किए जाने की संभावना है।
सर आपने बताया था कि जैसे जो बच्चे होते हैं डाइट में स्टूडेंट्स उन्हें आप पहले सेमेस्टर में स्कूल ऑब्जर्वेशन के लिए भेजते हैं और फिर स्कूल इंटर्नशिप के लिए, तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैं ये जानना चाहूँगी कि आपके और जो हेडमास्टर होते हैं उनके कैसे रिलेशन है और वहाँ पर जब बच्चे जाते हैं तो उनसे किस तरीके का मतलब उम्मीद रखी जाती है, मतलब क्या उनसे काम कराया जाता है, क्या उनसे ऑफिस वर्क या फिर क्लास को पढ़ाने के लिए, तो ये सब चीज़ों के बारे में।
वो जो ऑब्जर्वेशन जाते हैं वो इंटर्नशिप ही है
जी।
जो पहले सेमेस्टर का इंटर्नशिप है उसमें वहाँ बच्चों से पढ़वाते नहीं हैं, हमारे सिलेबस में भी नहीं है, वो ऑब्जर्वेशन करेंगे कि वहाँ के रजिस्टर कैसे बनाए जा रहे हैं, वहाँ के टीचर्स नॉन एकेडमिक चीज़ों में किस तरह से काम कर रहे हैं, रजिस्टर कैसे बना रहे हैं, उपस्थिति कैसे, सूचनाएँ कैसे दे रहे हैं, क्लासेस को अरेंज कैसे किया जा रहा है, MDM कैसे बनवा रहे हैं, ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने का मतलब ये है कि भावी टीचर हैं, भविष्य में जाएंगे तो चीज़ों को पहले इनको पता रहे, तो फिर पहले सेमेस्टर में किया जाता है, फिर शेष और सेमेस्टर्स में ये लोग जाते हैं बच्चे क्लासेस को, पहले सेकंड सेमेस्टर में एक अच्छा 1-2 को, फिर आगे में 3-4 को 5 को इस तरह से पढ़ाते हैं और पाठ योजना से पढ़ाते हैं। और वहाँ हमारी टीम भी जाती है उन बच्चों को ऑब्जर्व करने और हम वहाँ के हेड टीचर्स को भी निर्देशित करते हैं कि वो उनको गाइड करें, उनको ऑब्जर्व करें, उनमें जो कमियां हैं उनको बताएं, उनमें इम्प्रूवमेंट हो, ताकि वो एक भविष्य में अच्छा शिक्षक बन सके।
जी
हम उसके लिए वो मूल्यांकन करते हैं तो उसको मार्क्स भी देते हैं।
हाँ।
है टीचर्स तो हम अपने यहाँ सबमिट करते हैं, उनके मार्कशीट में उनके अंक में वो शामिल किया जाता है।
अच्छा सर, अब मैं कोविड की अगर बात करूँ तो उस दौरान में आपकी बातचीत जो और संस्थाएं जैसे SCERT हो गई और जिला लेवल पर जो संस्थाएं हैं उनकी BRC CRC, तो उस पर उन दिनों में आपकी कैसी बातचीत होती थी उनसे?
पहली बात तो ये मैम कि मैं कोविड के बाद आया हूँ, लेकिन फिलहाल मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ, क्योंकि मैं इसके पहले खंड शिक्षा अधिकारी था, उसके पहले मैं टीचर था
जी।
तो उसको मैंने डायरेक्टली देखा है। तो आवागमन बंद हो गया, इंटरेक्शन बंद हो गया, तो बेसिक शिक्षा में शासन निर्देश मिले थे कि यदि बच्चों को ऑनलाइन जहाँ तक संभव हो सके पढ़ाया जाए, थोड़ी सी जब शिथिलता दी गई तो बेसिक शिक्षा में मोहल्ला क्लासेस संचालित की गई। हमारे टीचर्स, सिर्फ एक टीचर स्कूल पर रहता था और सभी टीचर्स जो भी उपलब्ध थे वो मोहल्ला क्लासेस में जाते थे, वहाँ जो भी बच्चे उपलब्ध होते थे वहाँ पढ़ाते थे। हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे, वहाँ पर काम देते थे उनको। फिर वो जिनके पास उपलब्ध थे, जिनके पास नहीं थे उनके लिए तो मोहल्ला क्लासेस थी, जिनके पास स्मार्टफोन या जो चीज़ें उपलब्ध थी फिर वो अपने होमवर्क करके फिर व्हाट्सएप पर देते थे, हम लोग उसको चेक करके फिर फीडबैक देते थे। जैसे जैसे हुआ, हाँ इसमें है कि एक बड़ी आबादी के पास स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं थे उस समय, तो उसमें थोड़ा सा बच्चों का टच जो है पढ़ाई से छूटा, वो गैप अभी भरने की कोशिश की जा रही है और निकट भविष्य में हम हो सकता है भर लेते हैं उसको।
जी सर, आपको जैसे डाइट में अगर कुछ रिसोर्स की ज़रूरत है जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया ये सब, तो इसके लिए जो फंड होते हैं इसको मतलब लेने की क्या प्रक्रिया होती है?
हम ये कार्य योजना बनाते हैं और मांग करते हैं अपने SCERT से कि हमको ये चीज़ें ज़रूरत हैं, इसको दी जाए। यदि उनको लगता है कि हाँ ये वास्तव में ज़रूरत है तो देते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी एक प्रस्ताव बना के भेजा है कि कम से कम हमारे यहाँ 2 स्मार्ट क्लासेस हों ताकि हम बच्चों को नए जमाने के हिसाब से पढ़ा सकें और रुचि भी बच्चों की उसमें रहेगी, तो वो चीज़ें हमने किया है, हम भेजे हैं, शायद हमको फंड भी मिल जाए 2 स्मार्ट क्लास के लिए। फिर चूँकि अभी बात चल रही है कि डाइट में भी BEd बैचलर ऑफ एजुकेशन, तो प्रदेश में कुछ डाइट्स को वो मान्यता दी जाने की प्रोसेस है, फाइल शायद गई है, तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हो रहे हैं। तो उसके लिए हमको अलग से क्लासरूम्स की ज़रूरत होगी, हमारे पास टीचर्स तो हैं लेकिन क्लासरूम्स नहीं हैं, हम उसकी डिमांड करेंगे। और कुछ और भी एक्स्ट्रा क्लासरूम्स चाहिए, चूँकि जब हमारे पास अब इतनी क्लासेस चल रही हैं कि एक बृहद ट्रेनिंग खासकर इन सर्विस वालों का हम लोग थोड़ा सा असुविधा महसूस करते हैं, हमको बच्चों को कम करना पड़ता है, इकट्ठे ज़्यादा मात्रा में बैठानी पड़ती है, तो उसके लिए हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है। और हम चाहते हैं कि एक, हालांकि हमारे पास एक अभी भी हाल ही में जुलाई में एक ऑडिटोरियम हॉल उपलब्ध हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं उस जैसा एक आध और एक हाल मिल जाएगा तो हम अपनी ट्रेनिंग्स को अपने बच्चों को भी बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं।
सर, डाइट में जैसे रोज़ाना के जो काम होते हैं उसके लिए आपके पास क्या क्या फैसिलिटी, जैसे मैं नेम करूँ जैसे PN का होना, क्लर्क्स होना, लाइब्रेरियन, और जैसे लैब है प्रयोगशाला उसमें भी असिस्टेंट की ज़रूरत होती है, तो क्या कहते हैं क्या आपके डाइट में वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं आपके पास?
हाँ मैम, इस समय तो हमारे पास लाइब्रेरी भी है, लैब भी है, लैब में भी लैब असिस्टेंट है, लाइब्रेरियन भी हैं और प्यून भी हैं। हमारे यहाँ फिलहाल लगभग सभी काम सुचारू रूप से चल रहे हैं।
जी सर, अब जैसे थोड़ा डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जैसे क्या और डेवलपमेंट हो सकता है एक आपके करियर के पाथ में?
हम लोगों का करियर,
हाँ आपके करियर के पाथ में, जैसे अभी आपने बताया कि आप पहले BO थे, आपने पढ़ाया है, फिर आप BO आए, फिर अभी आप वरिष्ठ प्रवक्ता है, तो आपको क्या लगता है कि अब आगे आपके करियर में और क्या डेवलपमेंट की या ग्रोथ की संभावना है?
अब ये तो थोड़ा सा सर्विस मैटर हो गया
जी।
तो हम लोगों का पद क्लास टू है, क्लास टू गेस्टेड पद है, जिसमें हम लोगों का पद बीएससी के इक्विवेलेंट होता है, हम लोगों का जीएससी प्रिंसिपल्स का
जी।
तो हम लोगों का पद एक दूसरे में सर्कुलेट होता रहता है, फिर जब हम लोग प्रमोशन पाते हैं तो माध्यमिक में भी जा सकते हैं, या डाइट में उपराचार्य हो सकते हैं और माध्यमिक में डीआईएस हो सकते हैं, बेसिक में हम लोगों का एक मंडलीय सहायक निदेशक का पोस्ट होता है, एडीबीसी जिसको बोला जाता है, उस पर जा सकते हैं। तो इस पद पर प्रमोशन भी होते हैं और आगे बढ़ने के चांसेस भी होते हैं। लेकिन यहाँ रहकर हम लोग ये रहता है कि खासकर बेसिक एजुकेशन में रिसर्च या इनोवेशन से जितना भी बेहतर कर सकें एक टीम के रूप में, या करवा सके अपने टीचर से, तो बेहतर है, ताकि कम से कम बेसिस से सुधर जाती है, अच्छी हो जाती है, तो शायद हमको लगता है देश जल्दी ही और बेहतर स्थिति में होगा
जी। सर, जैसा आपने बताया कि आपका प्रमोशन होने के चांसेस रहते हैं, तो क्या उसके लिए कोई प्रोफेशनल जैसे डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं, तो अगर होते हैं तो क्या आपने उनमें पार्टिसिपेट कभी किया है?
मैम, अभी तो हम लोग बहुत कम सर्विस, अभी हम फरवरी में आए हैं, करीब 10-11 महीने हुए, तो इसके बारे में जानकारी नहीं। ये है कि हम लोग जब इस सेवा में आए तो हम लोग की ट्रेनिंग हुई है और आगे की जानकारी हमको नहीं है। वैसे हम चाहेंगे कि समय समय पर हम लोग के एक रिफ्रेशर कोर्स की तरह करवाए जाएं, वो होते होंगे, लेकिन हम इसके बारे में पता करेंगे, अभी मुझे जानकारी फिलहाल नहीं है
जी। सर, जैसे इस यूपी में और भी डाइट्स हैं, तो वहाँ पे और भी जैसे स्टाफ होंगे, जैसे और वरिष्ठ प्रवक्ता प्रिंसिपल, तो क्या जैसे इस डाइट में भी आप अपने फैकल्टी से कैसे कनेक्टेड हैं, और जो प्रदेश में और जितने डाइट है आप उनसे कैसे कनेक्टेड, मतलब जैसे हो सकता है व्हाट्सएप ग्रुप हो गया या कोई लेटर के थ्रू, तो आप कैसे उनसे कैसे आप कनेक्ट करके रखते हैं?
अब डाइट वरिष्ठ प्रवक्ता से या बीएससीएच से तो हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी है, और किसी किसी का मैक्सिमम डाइट्स का भी फेसबुक और यूट्यूब पेज, यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज भी है, तो जब भी मौका मिलता है हम लोग तो उस पर भी, कई फेसबुक पेजेज हैं जिस पर जुड़े हुए हैं, हमारे यहाँ डाइट का भी है, तो यदि कभी कुछ सब्सक्राइबर बढ़ाने के चक्कर में हमारे साथी कहते हैं कि भाई हमारा हमारे वाले का भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो उस पर भी चीज़ें आती रहती है, कंटेंट देख के दूसरे मोटिवेट भी होती हैं, अच्छी चीज़ें हैं तो उसको हम अपने यहाँ भी करने की कोशिश करते हैं
जी। तो सर, जैसे आपके जैसे एक तो होता है जब पढ़ाने का एक तरीका हमने देखा है कि चॉक बोर्ड हो गया या वाइट बोर्ड या मार्कर हो गया, आपके यहाँ पर और क्या मतलब दूसरे तरीके से जो टीचर्स होते हैं वो बच्चों को जो पढ़ाना चाहते हैं वो पढ़ा सकते हैं, जैसे प्रेजेंटेशन हो गया, वीडियो हो गया, ये सब दिखा के, तो वो और कौन से तरीके यूज़ करते हैं?
कभी कभी हमने देखा हमारे टीचर्स छोटे छोटे प्रोजेक्ट दे देते हैं, वो बच्चे करके लाते हैं, क्लासरूम के बजाय फील्ड में जाते हैं, अपना प्रेजेंट करते हैं, गतिविधि आधारित, क्योंकि बाद में बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग भी करनी होती है या वो रोचक माना जाता है, तो हमारे बच्चे भी उसको करते हैं, प्रोजेक्ट ले लिए इस पर, फिर वो प्रोजेक्ट पर अपना काम करते हैं और टीम बनाकर फिर उसको प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, फिर आपस में बच्चे इंटरेक्शन करते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि इसको किया तो इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है
जी।
फिर वो हमारा टीचर सिर्फ एक गाइड और दर्शक के रूप में देखता है और बाद में उनको फीडबैक देता है कि आपने क्या अच्छा किया, क्या गलत किया
जी।
तो ये 10-10 के रूप में 12 के जैसा भी टीम है बना देते हैं हम लोग, एक मोटा मोटा गाइडलाइन दे देते कि ये करना है, इसको इसको नहीं करना है, इसके इस रेंज के भीतर ही रहना है। तो खासकर साइंस में या कार्य अनुभव में, और फिर कभी कभी हम लोग जिसे अभी 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस था, 10 दिसंबर को था विश्व मानव अधिकार दिवस, या परिवहन पखवाड़ा मनाया जाता है, पोषण माह मनाया जाता है, तो उससे रिलेटेड चीज, जैसे पोषण माह मनाया गया तो ये हुआ कि भाई संचारी रोगों के बारे में बता दिया जाए, या गैर संचारी रोग तमाम हैं उसके बारे में बता दिया जाए, तो वो टॉपिक हम लोग दे देते हैं, बच्चे से खोज के लाते हैं नई नई चीज़ें, चूँकि ज़माना डिजिटल का है तो बच्चों को अपने से खोज लेते हैं, बताते हैं, एक दूसरे की जानकारी में वृद्धि होती है, उनके एकेडमी में भी वृद्धि होती है, फिर वो कंपटीशन में टेट सुपर टेट में भी उनका काम आता है, तो वो आपस में करते रहते हैं, इससे उनको ये नहीं लगता हम क्लासरूम में ही पढ़ रहे हैं, जब खुद से वो लोग प्रयास करते हैं तो फिर उनका ज्ञान चक्षु विस्तृत होता है और अच्छा लगता है हमको
जी। सर, जैसे देखा जाता है कि स्कूल में बच्चे अलग कास्ट से होते हैं, लड़का लड़की होते हैं और रिलीजन से होते हैं, तो उस चीज को एक अध्यापक अपने बच्चों को कैसे, मतलब उस चीज को जैसे होता है ना डाइवर्सिटी लाना, तो एक इंक्लूसिव एजुकेशन जिसे बोलते हैं, तो आपके यहाँ पर उस चीज को कैसे आगे, मतलब उसको कैसे आप लोग इनकल्केट कर रहे हैं अपने इसमें पाठशाला में और पढ़ाने के भी उसमें क्लासरूम में? जैसे
यहाँ पर क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ ग्रेजुएट होकर आते हैं
जी,
और यहाँ पर हमने वो चीज़ें देखी नहीं है कभी किसी भी स्तर पर, किसी बच्चे ने कभी शिकायत भी नहीं की कि इस तरह से मतलब हमको भेदभाव होता है या हाँ कुछ हमारे माइनर दिव्यांग बच्चे होते हैं आते हैं तो हम लोग उनको पूरा सपोर्ट करते हैं। जैसे कोई बच्ची मतलब पैर से या हाथ से कुछ दिक्कत में है या कुछ है तो हम लोग उसका पूरा सपोर्ट करते हैं कि बाय द वे वो लेट से आई है या सीढ़ियाँ नहीं चल पा रही है या कुछ है, बायोमेट्रिक लगवाना है तो उसका पहले लगवा लीजिए, चीज़ें होती हैं। हाँ बेसिक में जब हम लोग हमारे जाते हैं मेंटर्स तो वहाँ कुछ चीज़ें होती हैं तो वहाँ उनको मोटिवेट किया जाता है कि इसको इग्नोर करके एक डाइवर्सिटी तो रहे लेकिन इंक्लूसिव रहे, किसी कोई बच्चा मुख्यधारा से अलग महसूस ना करे। यदि जिस दिन उसने महसूस कर लिया कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है या हम पिछड़ रहे हैं तो फिर वो ड्रॉप आउट में चला जाता है, बच्चा छोड़ने लगता है क्लासेस को, तो इसका ध्यान हमारे टीचर भी रखते हैं, हम लोग भी मोटिवेट करते हैं कि इस तरह से ना होने पाए। यदि कहीं होता अच्छा, इसके लिए कई योजनाएं भी हैं, सबको एक समान देखिए स्वेटर जूता मोजा ड्रेस, अब तो पैसे जाने लगे, MDM बनता है तो उसमें किसी बिना किसी भेदभाव सब बच्चे के साथ खाते हैं, कहीं कहीं समस्याएं आती हैं, लेकिन अमूमन मैंने देखा है सामान्यतः जो है रसोईया पहले शुरू में हुआ था MDM जब चला था कि मतलब किसी जात विशेष की रसोईया खाना ना बनाए या समूह विशेष के बच्चे नहीं खा रहे हैं, लेकिन अब ये चीज़ें नहीं हैं और बच्चे खाते हैं सब तरह से और उनको भी एक एकता का एहसास होता है, इससे कम से कम एक जो विभेद वाली समस्या है वो उस स्तर पर अब नहीं है और निकट भविष्य चलता रहे तो चीज़ें नहीं होंगी धीरे धीरे।
सर, जो DLED का करिकुलम यानी पाठचार्य होता है उसको बच्चों तक पहुंचाने के लिए आप किस प्रकार के रिसोर्सेज से उन्हें मतलब अवगत कराते हैं या उन तक पहुंचाते हैं? जैसे आपने बताया YouTube लिंक हुआ था कोविड के टाइम पे, तो कैसे आप क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल करते हैं कि बच्चे मतलब वो उस चीज़ को अच्छे से समझ सके और फिर आगे बढ़ सके?
अब जैसे अभी भी WhatsApp ग्रुप हम लोगों के बने हुए हैं
जी,
और क्योंकि अब ऑफलाइन क्लासेस चलने लगी हैं तो जब हम प्रोजेक्ट वर्क देते हैं तो प्रोजेक्ट वर्क में कभी कभी बच्चे हेल्प चाहते हैं कि सर ये कंटेंट ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो हम कुछ चीज़ें हैं कि उनको सजेशन करते हैं कि आप यहाँ यहाँ खोज सकते हैं इन वेबसाइट्स पर, तो उस पर वो देखते हैं, यदि उनको मिली तो ठीक है, नहीं यदि नहीं मिली, चूँकि मैक्सिमम चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, यदि नहीं मिली तो एक समूह के रूप में हम जो बच्चे ऐसा ऐसी समस्या के समाधान चाहते हैं तो हम बुला के उनको अलग से जो है कोशिश करते हैं कि वो चीज़ें पहले बताएं फिर वो समझें फिर वो खोजें
जी।
और नहीं तो कभी कभी बच्चे आपस में ही एक दूसरे से सहयोग करके वो चीज़ें देखते हैं सीख लेते हैं
जी।
और ख़ासकर हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जो इंटर्नशिप जा रहे हैं बच्चे या टेस्ट होने वाला है तो उसके पहले हम लोग उनको पहले से तैयार करने की कोशिश करते हैं कि जो है वो हालांकि एग्जाम फेयर जैसी स्थिति तो नहीं होती लेकिन ये सिलेबस BEd के पीछे थोड़ा सा मतलब अपग्रेडेड है, तो उसमें चीज़ों को साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं तब भी मैथ पढ़ाना है, आर्ट्स के हैं तब भी या चीज़ें हैं तो वो हमको कोऑपरेट करने की कोशिश करते हैं उसमें कि बच्चे बेहतर तरीके से उसको सीखें और समझें। हाँ कोशिश ये रहती है कि बच्चे खुद से सीखें, हमें गाइड की भूमिका में रहें क्योंकि बच्चे मैच्योर हैं तो हम टॉपिक दे दें कंटेंट दे दें उनको टारगेट दे दें ये आपको करना है, वो जो हम देते हैं वो हमारे पाठ्यचर्या सिलेबस के हिसाब से ही होता है तो फिर वो करते हैं बच्चे
जी। सर, एक वरिष्ठ प्रवक्ता के रूप में आपका प्री सर्विस इंटर्नशिप में क्या भूमिका रहती है और क्या आपको लगता है कि उस दौरान में जो प्री इंटर्नशिप में जाते हैं क्या वहाँ पर आपको लगता है कि बच्चे और आप खुद कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं?
चैलेंजेज बच्चे कभी कभी चूंकि इंटर्नशिप पर अनुभवहीन होते हैं तो किसी किसी बच्चे ने कोशिश मतलब कहा कि बच्चों से कनेक्ट होने में समस्या हो रही है, खासकर जो सारी क्षेत्र के बच्चे हैं, ग्रामीण क्षेत्र परिवेश में चले गए, तो रेयर केस में कभी कभी हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के बच्चे आ गए तो उनकी लैंग्वेज दूसरी, यहाँ हम टीचर्स चूँकि कोशिश करते हैं उन्हीं के परिवेश में पहुँच के उन्हीं की भाषा में, वो जो उनके घर की भाषा है उस भाषा में उनसे कनेक्ट हों ताकि वो बेहतर तरीके से बच्चे सीख सकें, तो थोड़ा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है लेकिन बस थोड़े समय के लिए, और फिर वो मेंटेन कर ले जाते हैं तो अच्छा करते हैं।
और आपकी भूमिका इसमें क्या रहती है?
तो हम जैसे इंटर्नशिप पे बच्चे जा रहे हैं तो हम बीएसएस को कोऑर्डिनेट करके स्कूल से ले लेते हैं, ब्लॉक से ले लेते हैं, फिर देखते हैं कि कहाँ टीचर्स कम हैं तो कोशिश करते हैं जहाँ बच्चे ज़्यादा हों टीचर्स कम हों वहाँ हम एक के बजाय दो दो बच्चों भेज देते हैं ताकि वहाँ शिक्षा व्यवस्था भी बढ़िया चले और बच्चे सीखे भी, और हम एक टीम बना देते हैं अपने डायट प्रवक्ताओं की कि नियमित अंतराल पर उन स्कूलों की विजिट करें, उनकी उपस्थिति देखें, वो सीख रहे हैं, सीखने में समस्याएं क्या आ रही हैं, क्या सुविधाएं चाहिए, वो टीचर से कैसे कोलाबरेट करेंगे, तो ये चीज़ें हम जो है एक कोऑर्डिनेशन की भूमिका में रहती हैं। कभी कभी हम खुद भी चले जाते हैं किसी साथ, चलो देख लेते हैं।
सो जैसे आपने बताया कि बच्चे टेट का एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, और काफ़ी बच्चों से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि कैसे वो डीएलएड के बाद में भी मतलब प्लेसमेंट की उम्मीद करते हैं कि उन्हें नौकरी मिले, तो आप लोगों का क्या सपोर्ट रहता है? क्या आप उन्हें मतलब ये टेट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं, या कोशिश करते हैं कि जो बच्चे यहाँ से पढ़ कर गए हैं वो उनसे मिले और उनके जो अनुभव है उसके उससे थोड़ी सहायता लेके सीखे, तो क्या आपका क्या इसमें रहता है?
हम अभी जो इधर थर्ड सेमेस्टर चल रहा है बच्चों का 2021 बैच के, तो हम एक दो बार इंटरेक्शन किए बच्चों से, क्लासेस में गए तो बच्चों ने कहा कि सर कम से कम एक पीरियड हमारा टेट की तैयारी के लिए हो जाए। तो जब मैं इनका टाइम टेबल बना रहा था तो मैंने स्पेशली कुछ टीचर्स से बात की, वो सहमत हो गए, तो हमने उनका लास्ट पीरियड इसके लिए रख दिया है कि चूँकि तैयारी करें बच्चे, तो हालांकि तैयार तो सभी थे, सभी लेक्चरर्स हमारे, लेकिन हम कुछ चार टीचर्स को लगा दिए हैं कि बैच वाइज जाएंगे उस पर जो है उसके सिलेबस के हिसाब से कुछ चीज़ों को अपना कोऑर्डिनेट करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे ताकि उनकी तैयारी भी साथ साथ कंपटीशन की होती रहे। और मैं बच्चों से कहता हूँ मैं हमेशा उपलब्ध हूँ, मैं खुद भी जाता हूँ क्लासेस में तो बताता हूँ कि जो है कैसे पढ़ना है चीज़ें हैं, तो बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा इंप्रेस होते हैं। अभी हम पीसीएस क्वालिफाई करके आए हैं और अभी कर रहे हैं हम लोग तैयारी, तो जो है बच्चे काफ़ी उत्साहित रहते हैं, जाते हैं बताते हैं उनको चीज़ें,
तो मतलब आपका पूरा सपोर्ट रहता है?
हाँ हाँ पूरा सपोर्ट रहता है
जी। सर अभी इन सर्विस की मैं अगर बात करूँ तो आप लोग मतलब कौन किसकी भूमिका रहती है कि उनके लिए जो भी मतलब वो लोग आ रहे हैं तो उनकी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम रहे तो वो कौन डिज़ाइन करता है, मतलब कौन उनका पूरा आना जाना, वो क्या लेक्चर अटेंड करेंगे, कैसे करेंगे, तो वो कौन देखता है?
कभी कभी हमारे पास ट्रेनिंग का पूरा शेड्यूल आ जाता है वहीं से, सुबह 10 से 5 तक का शेड्यूल आ जाता है, तो यदि सीआरटी शेड्यूल आया है तो हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे अभी हमारी जो इंग्लिश की ट्रेनिंग हुई है
जी,
तो उस संस्था जो आए थे तो वो अपने से ही पूरा लाए थे शेड्यूल, तो हमने उनको डिस्टर्ब नहीं किया, हमने सिर्फ ये किया कि लंच ब्रेकफास्ट और टी ब्रेक जो भी है तो हमने उनको उपलब्ध करवा दिया, उन्होंने अपने हिसाब से ट्रेनिंग संचालित किया। यदि डाइट करता है तो हम एक रूपरेखा बना लेते हैं कि 2 दिन का है तो फिर पहले दिन क्या क्या कंटेंट दिए जाएंगे उनको, फिर दूसरे दिन क्या दिए जाएंगे। जब हमारे यहाँ से होता है तो क्या करते हैं हम लोग कि लास्ट डे में हम उनका फीडबैक भी लेते हैं ट्रेनिंग का, फिर उनको प्रतिभागिता का एक प्रमाण पत्र भी देते हैं डायरेक्ट।
अच्छा।
हाँ तो ये करते हैं, फिर शेड्यूल एक बन जाता है कि एक जो है सुबह क्या करना है, शाम को क्या करना है, फिर अगले दिन क्या करना है। तो हाँ चूँकि हम लोग इसमें पारंगत हैं, अनुभव है, उस हिसाब से उनको कोई दिक्कत नहीं होती, हम लोग ये चीज़ें करते रहते हैं
जी। तो सर जो ये इन सर्विस ट्रेनिंग वाले बच्चे आते हैं तो आप इनकी मतलब
टीचर्स आते हैं?
अच्छा टीचर्स। हाँ तो जो टीचर्स होते हैं तो इनको आप लोग मतलब जैसे इन्होंने अच्छे से सीख पाए कि नहीं तो आप वो उसका कैसे आप लोग असेस करते हैं, जैसे एग्जाम हो गया या उनको एक क्लास दे दी पढ़ाने के लिए तो आप उसको कैसे असेस करेंगे कि मतलब उनकी जो भी ट्रेनिंग हुई है वो अच्छे से हुई है और अब वो आगे मतलब और अच्छे से कर पाएंगे?
जब समापन सत्र होता है तो अक्सर मैं या प्रिंसिपल में हम लोग जाते हैं जहाँ उनकी ट्रेनिंग हो रही होती है
जी,
तो हम 1-to-1 कभी कभी इंटरेक्शन भी कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं अपने सुझाव भी देते हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं बताते भी हैं। फिर जब वो अपने अपने स्कूल्स में जाते हैं तो हमारे डाइट मेंटर्स या हमारे प्रिंसिपल जी जाते हैं फील्ड में, तब उनसे पूछते हैं, वहाँ बच्चों से पूछते हैं कि वो जो सीख के आए हैं कि आप क्लास में अप्लाई कर रहे हैं
जी,
तो उससे पता चल जाता है।
अच्छा हाँ। और सर डाइट में जैसे मैम ने भी बताया कि काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो आप बता सकते हैं कि वो कौन डिज़ाइन करता है और वो कैसे इम्प्लीमेंट होती हैं यहाँ पर?
हाँ, वो एक्टिविटी, कुछ एक्टिविटी तो मैम आ जाती है वहीं से।
अच्छा।
प्रतियोगिता के रूप में, योग प्रतियोगिता, कहानी सुनाओ, कहानी लेखन प्रतियोगिता, या कभी कभी TLM का, इस तरह से कुछ हम लोग खुद डिजाइन करते हैं। जैसे भी हमने बताया कि यातायात सप्ताह है या पोषण माह है या कोई विशेष ओकेजन आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों में कंपटीशन करवा देते हैं, टीम बना के वो प्रेजेंटेशन करते हैं, फिर हम देखते हैं कौन सा अच्छा है, फिर उसको पुरस्कृत करते हैं और उससे बच्चे सीखते हैं। जैसे अभी बच्चों के लिए रंगोली बनाओ प्रतियोगिता हो गई, या फिर कोई निबंध प्रतियोगिता करवा देते हैं, या फिर बाद विवाद प्रतियोगिता करवा देते हैं। तो ये हम अपने स्तर से डिजाइन करते हैं कि लंच तक क्लासेस चलते हैं, लंच के बाद हम पूरे सेमेस्टर को, जो हैं 200 बच्चे हैं जो भी उस दिन उपलब्ध होते हैं, बुला लेते हैं। उनमें आपस में जो है पहले से निर्धारित रहता है, इस टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है, तो वो करते हैं, फिर हम उससे उनका जो है होता रहता है
जी। सर क्या डाइट के और भी किसी अन्य संस्थाओं से, जैसे NGO हो गया, कॉलेज हो गए, स्कूल्स हो गए, क्या डाइट का उनसे कोई टाइप का कोलैबोरेशन है? और अगर है तो आपको कैसे लगता है कि एक डाइट उनसे बहुत सारे चीज़ें सीख सकता है या कुछ बेनिफिट उनसे ले सकता है?
हाँ, हमारे यहाँ काफ़ी NGO, जिसे प्रथम एक NGO है, तो वो हम लोगों से कोऑर्डिनेट करते रहती हैं, उनका जो असर रिपोर्ट आती है उसमें हम लोग हेल्प करते हैं। हमारे बच्चे जाते हैं, उनके एक एजेंट के रूप में वहाँ पर सर्वे करते हैं
जी।
फिर अभी एक DCF सर्वे हुआ था, स्कूलों में एक DCF भरा जाता है, डाटा कैप्चर फॉर्मेट, स्कूल की सूचनाएं होती हैं जो UDIS पर उपलब्ध होती हैं
जी।
तो वो क्योंकि इसलिए कि थर्ड पार्टी असेसमेंट की तरह कि वो चीज़ें सही हों, ऑथेंटिकेट हों, तो वहाँ जाते हैं टीचर्स, भरते हैं। तो अभी हमारे बच्चों ने किया है
जी।
फिर एक मलेशिया की संस्था है, जो कोविड काल में उनका ये था कि हमारे बच्चे जो बेसिक के बच्चे हैं उनमें लर्निंग गैप ना होने पाए, तो उन्होंने क्या किया था, हमारे बच्चों, हम लोगों से सहयोग मांगा कि इन बच्चों को पढ़ाना है ऑनलाइन। तो हमारे कुछ बच्चे उसके लिए तैयार हुए, तो वो वीडियो बना के ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी वीडियो बना के वो WhatsApp पर भेजिए, कभी कभी ऑनलाइन भी क्लासेस 9 से 10, 8 से 9 ऑनलाइन पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ते जिनके पास उपलब्ध थे स्मार्टफोन। और गिव बैक टू सोसाइटी ऐसे करके कोई संस्था भी लोग आए भी थे
जी।
और फिर उन्होंने आश्वासन दिया है कि आएंगे। कभी कभी एक लोकल अभी यहीं के हैं, नाम याद नहीं रहे, कोई NGO हैं, तो वो भी आए थे, तो कह रहे थे कि हमको कुछ, हमारे कुछ शिक्षकों का सहयोग चाहिए कि वो कुछ कंटेंट विकसित कर रहे हैं, तो वो कंटेंट में वो शामिल हों और विकास हो जाए, तो फिर वो जाकर वो बेसिक स्कूलों में वो देना चाहेंगे। तो हमने कहा कि हम कंटेंट जो विकास कर रहे हैं उसमें हम हेल्प कर सकते हैं, लेकिन वहाँ जाएगा कि नहीं हमारे दीदी सर बताएंगे
जी।
हाँ, तो अभी वो तो फाइनल स्टेज में नहीं है। यहाँ आवध विश्वविद्यालय है, तो वहाँ पर अभी योग फैकल्टी के कुछ लोग आए थे
जी।
तो एक योग प्रतियोगिता हुई, तो हमने उनसे कहा, हम उनका एक कोऑर्डिनेशन चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी जो है योग सीखें उसी चीज़ें, तो उन्होंने आश्वासन दिया है। फिर स्पोर्ट्स फैकल्टी से हम लोग चाहते हैं, हमारे यहाँ भी स्पोर्ट्स के टीचर हैं, लेकिन तब भी जो है अच्छी चीज़ें हों डाइट में, इसलिए जो है वो सहयोग के लिए तैयार हैं। फिर हमारे जो प्राइवेट DLED कॉलेजेस हैं, वो भी हमसे अपेक्षा करते हैं कि जो चीज़ें यहाँ होती हैं वहाँ हों। यदि वो उनके तरफ से प्रस्ताव आता है तो हम किसी न किसी टीम को भेजते हैं कि वो असेसमेंट भी हो, अच्छी चीज़ें हैं तो हम लोग भी यहाँ अपने यहाँ सीखेंगे, करवाएंगे।
ठीक है सर, आपको लगता है कि आप और कुछ हमें अगर बताना चाहें इन सवालों से परे, अगर आपको लगता है कि आप कुछ और हमें बताना चाहेंगे?
अब एक चीज़, हम लोग मीटिंग में, मैम नहीं जाते तो मैं जाता था मीटिंग में, तो हम लोगों ने एक सजेशन दिया था डीजी सर को
जी।
कि अभी डाइट्स में और कुछ आधारभूत संरचनाएं आ जाए, आधारभूत चीजें आ जाती तो हम लोग और बेहतर कर सकते थे, ताकि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बने हमारा डाइट। तो उसके लिए आश्वासन मिला है, शायद फंड जल्द ही रिलीज हो जाए। तो उसके लिए हम लोग एक गैप एनालिसिस रिपोर्ट तैयार की है, उसको दिया है। तो यदि उस पर काम होता तो कुछ और चीज़ें आ जाएं, जैसे स्मार्ट क्लास है, पहली प्राथमिकता हम लोगों की स्मार्ट क्लासेस आ जाए, और एक ऑडिटोरियम वगैरह है ये आ जाता, और एक्स्ट्रा क्लासरूम्स आ जाते तो हमारी ट्रेनिंग इन सर्विस ट्रेनिंग है, और थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी समस्या आ रही है, हालांकि हम लोग मैनेज कर ले रहे हैं। तो ये प्लान हम लोगों का, जल्दी ही हमको लगता है यदि फंड आ गया तो हम लोग उसका निराकरण कर लेंगे, और मानव संसाधन हमारे पास है और एससीईआरटी का भी कोऑर्डिनेशन है, तो निकट भविष्य में हम और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, आशा कर ले जाएंगे।
ठीक है, थैंक यू सर।
थैंक यू।